बोलों को लेकर संग्रहित किया गया है, उसका नाम गुरुदेव सिंह के वचनामृत है। इसमें प्रथम गुरुदेव सिंह बताते हैं कि एक हम सामान्य रूप से तत्व अभ्यास करने के बाद भी एक गलती क्या हो सकती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में हम कर्ता कर्म संबंध मान लेते हैं, एक बात। और दूसरी कौन सी बात है, साधना की भूमिका के पहले सहज रूप से कसाई की मंदता आदि के भाव होते हैं, लेकिन उस कसाई की मंदता को ही हम साधन मान के वहाँ रुक जाते हैं। पूर्व भूमिका होती है, लेकिन पूर्व भूमिका में रुकना नहीं। और साधना के समय भी जय पूज्य भैंसी ने अभी चर्चा में बताया कि ये साधना की भूमिका में, चाहे सो सम्यक दृष्टि की हो, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो या मुनिराज हो, तो 28 गुण का विकल्प मुनिराज को होते हैं, अणुव्रत के विकल्प पंचम गुणस्थान में होते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के विकल्प सम्यक दर्शन या इसके पहले होते हैं, लेकिन वो कसाई की मंदता है, पूर्व भूमिका है। यथार्थ में वो क्या साधन है क्या? इतना समझ लेना कि साधन और उसका साध्य दो कैसे होने चाहिए, एक ही जाति के होते हैं। राग साधन हो और उसका साध्य परिणमन फल वितरागता रूप हो, ऐसा होता ही नहीं। और इसके लिए तो पूरा पुण्य पाप अधिकार हमारे लिए आचार्य देव उन्होंने लिखा है। पूर्व भूमिका का निषेध नहीं है, लेकिन वो रख के आगे बढ़ते हैं कि उसको छोड़ के करते हैं। अनुभव के काल में जो पूर्व भूमिका में चिंतन में विकल्प थे वो रहते हैं या छूट जाते हैं? 28 मंडल को रख के श्रेणी मानते हैं कि छोड़ के मानते हैं? तो उसका अर्थ क्या हुआ, जो छूटता है वो साधन नहीं है, जो छूटा है वो पूर्व भूमिका थी। तो ऐसे यहाँ दो प्रकार की बात में कि कहीं भी निमित नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्मपना मत मानना। तो यहाँ थोड़ा कल चला था कि आत्मा कर्ता और जड़ कर्म की अवस्था उनका कार्य, इसे कैसा संभव हो, क्या लिया है? आत्मा कर्ता करे और जड़ कर्म की अवस्था, या खास जड़ कर्म की अवस्था क्यों लिया, नौ कर्म की क्यों नहीं ली, कि ये दोनों के बीच में निमित नैमित्तिक संबंध है, द्रव्य कर्म और जीव के अशुद्ध राग आदि परिणाम। नौ कर्म का संबंध हो या न हो, लेकिन ये तो नियम रूप से होता है। तो ये आत्मा कर्ता बने और जड़ कर्म पुद्गल की अवस्था उसका कार्य हो, ऐसा संभव नहीं। ऐसा कैसा संभव हो? दूसरा, जड़ कर्म करता हो और जीव का विकारी परिणाम उनका कार्य, ऐसा भी कैसे संभव हो? दोनों अरस परस लिया, पहले क्या लिया, आत्मा करता माने राग के परिणाम और उसका क्या हो, जड़ कर्म उसमें निमित्त बनते हैं लेकिन उसका कार्य नहीं बनता है, और पूर्व के कर्म का उदय, जड़ कर्म का उदय वो कर्ता बने और वर्तमान राग के विकारी परिणाम जीव के कार्य बने, ऐसा संभव कैसे बने? ऐसा संभव नहीं। फिर भी बहुत से लोगों को इतना बड़ा भ्रम है कि कर्म के वजह से विकार होता है, कर्म द्रव्य कर्म का उदय ही विकार कराता है, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान आच्छादित होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। जब भी ज्ञान आच्छादित होता है, कम होता है, तभी ज्ञानावरणी का क्षोभ होगा, उदय होगा। जब भी केवल नान होगा तभी ज्ञानावरणी कर्म का क्या होगा, उदय होगा या उपशम होगा? उपशम होगा या उदय होगा? उपशम नहीं होगा, होता ही नहीं, ज्ञान में होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? अरे हो जाए तो अच्छी बात है, ज्ञान में उपशम हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? ज्ञान में, दर्शन में, और वीर्य में क्षयोपशम अनादि का है, उपशम इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है। अनादि का ज्ञान क्या है? खिला हुआ है। सही माने में ज्ञान खिला हुआ होने पर भी हमारी दृष्टि ज्ञान को छोड़ के ज्ञेयाधीन हो जाती है, यही की इतनी अधिकता रहती है कि खिला हुआ ज्ञान, शक्ति रूप सामर्थ जो नायक है उसकी बात तो बात के है, खिला हुआ ज्ञान को भी हम याद नहीं करते, हम किसकी अधिकता रखते हैं, ये पदार्थों की रहती है। तो यहाँ कहते हैं कि हाँ, ऐसा बहुत भ्रम है कि कर्म की वजह से, कर्म के कारण से विकार होता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, और इसके लिए पूरा कर्ता कर्म अधिकार है। शुभ राग का पक्ष मिटाने के लिए पुण्य पाप अधिकार है, और कर्ता बुद्धि मिटाने के लिए पूरा कर्ता कर्म अधिकार है। जो हम कर सकते नहीं है और जो करने योग्य नहीं है, ये सभी के लिए कर्ता कर्म अधिकार है। तो यहाँ कहते हैं कि जो कर्म के वजह से कारण से विकार होता है, ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म संबंध एक ही पदार्थ में होता है। कर्ता कहीं अलग हो और कर्म माने उसका कार्य कोई और पदार्थ में हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा सिद्धांत किसने बनाया? कितने साल पहले बना हुआ? किसने बनाया? वस्तु स्वरूप का जो सिद्धांत है वो अनादि से है। वस्तु और वस्तु के सिद्धांत कोई बनाने वाले होते नहीं, कहने वाले नहीं हो सकते हैं। जैसे हिस्ट्री कोई टीचर पढ़ाता है तो टीचर नहीं होंगे, लेकिन हिस्ट्री तो है वही है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के सिद्धांत अनादि से है, ये कहने वाले ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान, गौतम गणधर से लेकर कुंतकुन आचार्य, कोई ज्ञानी सभी हो सकते, लेकिन ये वस्तु स्वभाव का नियम कि एक ही पदार्थ में द्रव्य होता है वो कैसा होता है? कर्ता होता है, और उनकी जो पर्याय होती है वो क्या? उसका कार्य माने कर्म। द्रव्य व्यापक, कर्ता पर्याय, व्याप्य और कार्य। एक ही पदार्थ में कर्ता कर्म संबंध संभव है, क्योंकि कार्य करने के लिए कर्ता उससे भिन्न होता है कि उसमें तन्मय होता है? कार्य रूप प्रणमित होता है, कार्य में जो व्यापक तन्मय होता है वही उसका कर्ता हो सकता है। ज्ञाता बनने के लिए तन्मयता की आवश्यकता नहीं है। यदि ज्ञाता के लिए तन्मयता की आवश्यकता हो, तादात्म्य पने की आवश्यकता हो, तो कौन सी परिस्थिति बनेगी? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा ऐसे दुख बढ़ता जाएगा। केवल ही भगवान सबके ज्ञान को जानते हैं और फिर तन्मय होना पड़े तो जगत के पूरे दुख के वो भोक्ता हो जाएंगे। भिन्न रह के ज्ञान होता है और तन्मय होके कर्ता हो सकता है। अपने स्व की तन्मय वो एक अलग बात है, पर के साथ की बात चलती है। भिन्न रहकर ज्ञान होता है और तन्मय होकर कर्ता हो सकता है। तो ये पूरा एक छोटा सा सिद्धांत लगे, लेकिन ये भी यदि सिद्धांत हमारी समझ में आ जाए तो पूरा दिन का जो बोझा है, कर्तृत्व का बोझा, मैं करता हूँ, मुझे चलो करता तो इच्छा नहीं है, लेकिन क्या है? करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, लाचारी से भी अवसपने भी करना पड़ता है कि नहीं। तू अपने भावों का ही करता है, अपने भावों का ही भोगता है, इससे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है। हमारा अस्तित्व की कौन सी सीमा है? मैं एक पदार्थ द्रव्य हूँ, मेरा अपना क्षेत्र है, मेरी अपनी प्रणति वो मेरा काल है, और मेरे अनंत गुण मेरे भाव है। बस मेरा ही अस्तित्व की मर्यादा है, इसमें जो मैं करूँ सो कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा आगे कोई परद्रव्य जिसमें मेरा प्रवेश नहीं है, उसमें मैं तन्मय नहीं, और तन्मय नहीं तो करता नहीं। जिसमें मेरा प्रवेश नहीं तो तन्मय नहीं, और तन्मय नहीं तो करता नहीं। तो यही सही है यहाँ। तो ये पड़द्रव के कर्म के कारण विकार होता है, ऐसा है ही नहीं। देखिए उसका वही गुरुदेव से खुलासा करें, निमित्त से विकार होता है ऐसे शास्त्र में जो कथन आता है उसका अर्थ ये क्या समझना है कि निमित्त से विकार हुआ ऐसा नहीं, लेकिन निमित्त का आश्रय माने लक्ष्य करने से विकार होता है ऐसा समझना चाहिए। कथन तो आएगा, कल ये सभी बात हुई गई थी। क्या होता है, फर्क क्या है, निमित्त सापेक्ष कार्य है कि निमित्त सापेक्ष कथन है। निमित्त सापेक्ष क्या होता है, कार्य नहीं होता है। यदि निमित्त सापेक्ष कार्य हो तो क्या आपत्ति आएगी। तो हर समय ऐसा कौन सा संसारी जीव है जिसको कर्म का उदय न हो, तो फिर क्या होगा। यदि निमित्त से राग हो, कर्म से राग हो, तो हम कभी वितराग हो ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, निमित्त तो कह निमित्त सापेक्ष कथन क्यों किया। यदि निमित्त सापेक्ष कार्य नहीं है तो निमित्त सापेक्ष कथन क्यों किया। निमित्त का ज्ञान कराने हेतु, निमित्त से कार्य कराने ये बताने के लिए नहीं। फिर से दो फर्क क्या है, निमित्त सापेक्ष कथन वहाँ निमित्त कौन था उसका ज्ञान कराने के लिए है, निमित्त से कार्य होता ये सिद्ध करने के लिए नहीं। जैसे भेद का कथन क्यों होता है, अभेद को बताना है, क्योंकि सीधा अभेद पहचाना नहीं जाता है, इसलिए भेद करके समझाना पड़ता है। कोई भी वस्तु आप जैसे कार लेने को जाते हो तो जो सेल्समैन होगा वो क्या बात करेगा, हमारी कार अच्छी है अच्छी है, बस इतना ही कहेगा ना, नहीं तो क्या करेगा, सभी अलग अलग भेद करके करेगा कि हमारा ए ट्यूबलेस टायर है, पावर स्टीयरिंग है, फिर जो भी इंजन की कैप है सभी करेगा। और कोई कहे मुझे टायर अच्छे लगे थे तो दे दो, तो देगा कि नहीं। नहीं, आपने प्रशंसा किसकी की, पार्ट्स की किए है तो मैं वही लेके जाऊँ। कथन भेद से है, बेचना अभेद है। कार के कथन हम कैसे करते हैं, भेद कर से, लेकिन बेचते क्या है, पूरी कार अभेद। ऐसे ही ऐसा कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए समय सार की आठवीं गाथा में आचार्य देव ने दृष्टांत देकर समझाया है कि किसी ब्राह्मण ने लेच को कौन सा शब्द दिया, स्वस्ति ऐसा शब्द दिया, वो समझता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ करके भेद करके कहा तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो तुरंत उसको क्या होता है, उसका भाव ग्रहण। पहले क्या था, स्वस्ति शब्द जब ही सुना तभी क्या था, शब्द का ग्रहण था लेकिन भाव की समझ नहीं थी। और जहाँ उसका ही अर्थ करके बताया तो शब्दों का ग्रहण के साथ भाव का ग्रहण। ऐसे ही आत्मा को समझाने के लिए क्या किया जाता है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा। तो वहाँ आत्मा में क्या होगा, तीन कंपार्टमेंट होगा। ये पहले ज्ञान दर्शन का होगा। पहले आत्मा में गुण कैसे होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं, ये समझाने के लिए क्रम है। वहाँ पदार्थ में तो एकाकार रूप है, तन्मयता रूप है। तो यहाँ दो प्रकार, तो यहाँ जे भी जहाँ भी शास्त्र में ऐसा शब्द है कि निमित्त से विकार होता है, कर्म के उदय से विकार होता है, तभी ऐसा समझना कि निमित्त से का विकार नहीं हुआ है, लेकिन निमित्त का लक्ष्य किया है, निमित्त के संबंध में जुड़े है तो पर्याय में विकार होता है। तो इस प्रकार, और जैन दर्शन में वर्णन पूर्ण है या अपूर्ण है, पूर्ण है, कैसे पता लगा पूर्ण है। और जैन दर्शन में जो भी कथन है वो पक्षपात वाला है या सही निर्दोष है, निर्दोष है, सही यथार्थ जैसा है ऐसा। ऐसा कैसे आपको लगा कि ये निर्दोषी है और पूर्ण है? जैन दर्शन के मूल में, जैन शासन के मूल में कौन है? सर्वज्ञ। आपने कभी शायद शब्द सुना होगा, धर्मनो मूल सर्वज्ञ से। पूरा जिन शासन में मूल में कौन है? सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ नियम से कैसे होते हैं? वितराग ही होते हैं। वितरागता के बिना कभी भी सर्वज्ञ पना हो सकता नहीं है। ये सिद्धांत सिद्ध करता है कि कोई भी राग तेरे ज्ञान स्वभाव को खंडित करता है, कोई भी राग ज्ञान स्वभाव को बाधक है। अंश मात्र भी, अणु मात्र समझते, अंश मात्र भी माने कौन सा? अंश मात्र, अणु मात्र राग माने कौन सा? स्वंजलन का लोभ कसाय का भी यदि राग रह गया तो भी पूर्ण केवल नान प्रकट होने वाला नहीं है। तो ये पूर्ण वितरागता के बाद ही सर्वज्ञपना हो। तो पूर्ण वितराग होने से पक्षपात नहीं है और सर्वज्ञ होने से पूर्ण बात है। तो जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ क्या होता है? उपादान निमित्त ये संबंध होता है। तो वहाँ उपादान का भी वर्णन करते हैं और उसी समय उसी कार्य में जो अनुकूल होते हैं इसको निमित्त करके बताते हैं। निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त का क्या है? कर्ता रूप से निषेध है, अस्तित्व रूप से नहीं है। कार्य के समय निमित्त का, उपस्थिति का निषेध नहीं है। ऐसे तो समझो तो पांचों समवाय में या पांचों लब्धि है उसमें निमित्त है। पांचों समवाय में है कि नहीं? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, भवितव्य और निमित्त। और पांच लब्धि में देशना लब्धि है, वो एक निमित्त रूप से। तो जैन दर्शन पूरा वर्णन में जैसे उपादान के में कार्य करने का सामर्थ्य है और परिणमन करता है तभी वहाँ एक निमित्त रूप से उपस्थिति होती है। और यदि निमित्त ने कार्य किया तो उसका अर्थ क्या होगा? उपादान सामर्थ्यहीन होगा। तो जगत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें कार्य करने का सामर्थ्य न हो? कोई भी जड़ चेतन कोई भी हो, किसमें का अपना कार्य करने का सामर्थ्य नहीं है? कौन सा पदार्थ? क्यों क्यों? छोटा सा परमाणु में बेचारा क्या करता होगा? हम तो पूरे कैसे हैं, शक्तिशाली है ना, सबका भी कर सके ना। हर एक पदार्थ में वस्तुत्व गुण है, अपना प्रयोजन कार्य होता ही है और वो प्रयोजन कार्य निरंतर बदलता है, ऐसा द्रव्यत्व गुण भी है। तो कार्य है कर्म और कार्य बदलता है वो क्रिया है, दोनों के लिए भी। कर्ता जो है उस समय उपादान में अपना कार्य होना भी उनका स्वभाव है और वो कार्य निरंतर बदलना ऐसी क्रिया वो भी उनका स्वभाव है। उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं निमित्त को दा, हर एक पदार्थ का अपना कार्य करने का पूर्ण सामर्थ्य है। लेकिन ये हम स्वीकारना हमें क्या लगता है? कठिन लगता है। क्यों? इतनी पराधीन वृत्ति हो गई कि मैं स्वयं एक अपना हित रूप कार्य का करने वाला सामर्थ्यवान तत्व हूँ, ऐसा विश्वास आता ही नहीं है। बहिर्मुख वृत्ति है, पराधीन वृत्ति है, इसमें अपना सामर्थ्य का स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये निमित्त का लक्ष्य करने से ही विकार होता है। यदि जीव जो जीव पुद्गल मां नति, यदि जीव पुद्गल में नहीं और पुद्गल जीव में नहीं तो फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे संभव है? जो माने ये सिद्धांत इतना सीधा, फिर से चलो एक हम ये भी ले, कोई कहे जीव पुद्गल में है, जीव पुद्गल में और पुद्गल जीव में, तो क्या होगा? हाँ तो होगा, एक ही होगा, इसमें क्या है? अरे फिर छह द्रव्य ही बनेंगे नहीं, द्रव्य में यदि विश्व है, विश्व में एक ही द्रव्य का अस्तित्व है कि कम से कम जाति अपेक्षा से जीव और अजीव है, फिर अजीव का आप डिवीजन करो तो इंडिविजुअल 5 नाम आएंगे। जगत में यदि एक ही द्रव्य का अस्तित्व हो तो अशुद्धता होगी ही नहीं है, तो कम से कम 2 जाति के द्रव्य तो सामान्य देखने में भी आता है, एक जीव और एक अजीव माने जड़। तो यदि एक दूसरे में सम्मिलित हो जाए, एकाकार हो जाए, तो 2 रहा का गुरुदेव से इसके लिए एक अच्छा एक सिद्धांत, विश्व में जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य माने ग्रुप बने तो जीव अजीव, बाकी इंडिविजुअल नाम ले तो 6 द्रव्य, और संख्या से लेवे तो अनंत द्रव्य, जीव अनंत पुद्गल अनंत। तो जगत में संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य, अनंत रूप रेखे, अनेक अनेक रूप रेखे, भिन्न भिन्न रेखे परिणमन करते या एक रूप हो जाते हैं। यदि भिन्न भिन्न रूपे करते हैं तो स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें एक दूसरा करे ऐसा कर्ता कर्मपना आएगा कहाँ। जीवन में यदि संभव कैसे हो, जीव और अजीव दोनों एक रूप कैसे हो सके, जहाँ भिन्न जाति हो वहाँ एक रूपपना कैसे हो, यहाँ ऐसा कि थोड़ी थोड़ा आधा मनुष्य और आधा तिरंच, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2 जाति अलग है। ऐसे यहाँ जीव और पुद्गल, तो जीव यदि जीव पुद्गल में नहीं है और पुद्गल दोनों परस्पर में नहीं, तो फिर उसमें कर्ता कर्म भाव कैसे संभव, क्योंकि भिन्न द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्मपना हो सकता नहीं, कर्ता कर्मपना एक ही। फिर से इसमें बहुत 75वीं गाथा समय सार की, उसके बाद श्लोक में इस सिद्धांत पहले दिखा है, पहले क्या है, कर्ता कर्मपना कहाँ संभव है, जहाँ व्याप व्यापक संबंध होता है, और व्याप व्यापक संबंध कहाँ होता है, एक ही पदार्थ में, तत्स्वरूप में, तत्स्वरूप तत् माने तेज स्वरूप में, एक ही स्वरूप में एक ही पदार्थ है, वही व्याप व्यापक संबंध है, और जहाँ व्याप व्यापकपना है वही कर्ता कर्मपना है। द्रव्य सो व्यापक और पर्याय सो व्याप्य, ऐसा ही संभव है। तो जीव पुद्गल दोनों भिन्न द्रव्य है, और एक फिर से भिन्न द्रव्य माने क्या, एक दूसरे से अलग है भिन्न है माने क्या, एक का अस्तित्व में दूसरे का अस्तित्व का अभाव, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव, अभाव माने न होनापना, और नेगेटिव भाव माने होनापना, एक का दूसरे में नहीं होनापना। तो यदि नहीं होनापना माने क्या, होनापना किसने प्रकार से होता है, अस्थि रूप कितना होता है, 4 रूप से, द्रव्य रूप से, क्षेत्र रूप से, काल रूप से और भाव। तो यदि 4 रूप से भाव है तो पूर्ण अभाव भी 4 रूप से होना है। तो जिसके द्रव्य में प्रवेश नहीं करूँ, जिस क्षेत्र में न जाओ, जिसका काल को मैं नहीं करूँ और जिसका भाव में भी मेरा अभाव है, तो मैं उसका कर्ता कैसे हो सकता, और वो मेरा कार्य कैसे बन सकता है, क्योंकि उस कार्य, उसके कार्य और मेरे कार्य के बीच में क्या है, अत्यंत अभाव है। तो मैं उसका करूँ ये संभव कहाँ है, मैं उसका क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो सकता हूँ, वे मेरे क्षेत्र में नहीं आते, मैं कैसे कर्ता बन सकता हूँ। तो ये 2 द्रव्य की भिन्नता कैसे स्वीकार होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता से स्वीकार होनी चाहिए कि आधी रात्रि में निंद्रा में और को जगा के बोले तो भी यही भाव रहना चाहिए, नहीं रात्रि में हमारे नाम से कोई पुकारे तो हम क्या करेंगे, नहीं जागृत हो जाते कि सोते ही रहते, जागृत हो जाते, कभी ऐसे डाउट नहीं पड़ता कि नहीं ये कुछ नाम बोलता है ये मेरा होगा या नहीं होगा, कोई दूसरे को पुकारता नहीं, स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही, क्यों क्यों क्या है, माइंड सेट कर लिया है, मैं शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, एक एक कृत्रिमता से जन्म के बाद शब्द दिया गया, इसमें कितना एकत्व कर लिया है कि मैं मानो वो ही हूँ, कम से कम मैं अनादि का चैतन्य तत्व वो भाव में एकत्व क्यों नहीं होता है? ये तो कृत्रिमता से दिया ना, एक नाम पूर्व जन्म से लेके आए हैं, अहियाँ भी जब ये दिया तभी तो पता ही नहीं था, थोड़ा बहुत वही शब्द सुनना है बहुत सुना तो क्या हुआ? नहीं गुजराती में नानपण थी, नानपण में आओ शब्द क्या थी खबर पड़ी गई, वारंवार शू आवा मीडो ये આપણે સાંભળવામાં આપણે સામું જોઈને એકનો એક શબ્દ જ આવતો હતો, એટલે આપણે શું ગ્રહણ કર્યું કે 100 વાર લખીને યાદ રાખ્યું નામ, કેટલી વાર લખ્યું તું? નહીં તો ભૂલી ગયા, લખ્યું નથી અને ભૂલતા નથી. શેના માટે? કોન્સ્ટન્ટ એનો પરિચય છે. અરે ભાઈ કે નામ કો સુનને સે હમ ઇસમેં એકાકાર હો જાતે, તો એ જીનવાણી ગુરુવાણી સુન કે આત્મા મેં ક્યો નહીં હોતે? उनका इतना परिचय किया है कि कभी हम भूलते नहीं है, याद करते नहीं फिर भी भूलते नहीं. तो ऐसे जिनवाणी का इतना रुचिपूर्वक क्यों ग्रहण न करे कि जीवन में कभी भी वो भूले नहीं. याद करना पड़े समझ लेना वो कृत्रिमता होगी. जो सहजता है इसमें कोई स्मरण के लिए कोई आवश्यकता सहजता होती है. तो यहाँ फिर से गुरुदेव से कह, यदि जीव पुद्गल में और पुद्गल जीव में आ जाए तो फिर उसमें कर्ता कर्म इसमें ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर इसमें कर्ता कर्म भाव कैसे संभव? क्योंकि दो के बीच में अत्यंत भाव है. एक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव में दूसरे का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ही नहीं. जिसका जिसमें अभाव उसका कभी कर्ता हो सकते नहीं है. इसलिए जीव तो कैसा है? ज्ञाता है, वो ज्ञाता ही है. कभी कभी तीनों काल सदाए, इसमें मजा क्या आएगा? कुछ इसमें एकत्व करे, कुछ आगे पीछे हो तो कुछ चैलेंजिंग होता है ना. ज्ञातापना में क्या होता है? बस आप तो बैठे रहो जानते रहो, क्या मजा आएगा? जैसे पूज्य बेंसिन का ये कभी भी इतना शब्द जब भी आ जाए, कौन सा शब्द? ज्ञायक या ज्ञाता, दोनों एक ही बात. तभी भी इतना मत समझना कि वो क्या है, फीका. आप गुजराती में सुख है ना, लुक हो, आप समझते फीका. ऐसे मत समझ, ज्ञाता पने में ही आकुलता का अभाव है. जो अपना, क्योंकि ज्ञातापना क्या है? मेरा स्वभाव है, और स्वभाव में कभी भी आकुलता नहीं होती. ऐसा मत समझ ज्ञाता में क्या होगा, ये ज्ञातापन है. अरे ज्ञाता के साथ ही आनंद का अभेदपना है. जहाँ ज्ञातापना है वहाँ करने की आकुलता नहीं. एक बहुत समझना फिर से, हम कभी कर्ता बनते हैं, कोई कार्य का कर्ता बनते हैं, क्यों बनते हैं? उसके आगे क्या प्रयोजन रहता है? फल की अपेक्षा रहती है. कोई भी कार्य करने के पीछे क्या अपेक्षा रहती है? फल की. तो फल की यदि नहीं हो तब तक क्या होगी? आकुलता बनी गई, आकुलता बनी रहेगी. जो भी कार्य के लिए फल की आशा से कार्य करते हैं और फल नहीं मिलता है तो क्या होता है? और फल मिल गया तो क्या हुआ? फिर निराकुलता हो जाती है. पर के कार्य में कार्य नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुए? आकुलता. और यदि इच्छा के अनुरूप हुआ तो फिर भोगने की रक्षा करने की आकुलता तो बनी रहेगी. तो सही में मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता पने का स्वभाव है. जो सहज जगत का परिणमन होता है सो होने दो, मैं तो उसका क्या हूँ? ज्ञाता हूँ. मेरे लिए न तो वो इष्ट है और न तो वो अनिष्ट है. इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट की कल्पना ने ही राग द्वेष को जन्म दिया है. और राग द्वेष का नाम ही क्या है? संसार है. संसार कोई संयोग का नाम नहीं है. संसार, संसार मार्ग, मोक्ष और मोक्ष मार्ग, ये चारों किसका नाम है? अपनी परिणति का नाम है. मोक्ष कहाँ रहता है? तीन लोक में से मोक्ष कहाँ रहता है? ऊर्ध्वलोक में रहता है. नहीं, सिद्ध भगवान तो है ना, तो फिर मोक्ष कहाँ है? सिलसिला पे है इन्हें, और चार गति नरक गति कहाँ है? नरक गति अधोलोक में है ना? नरक गति अधोलोक में नहीं होती, नरक गति जीव की पणति में है। उस पणति को प्राप्त आत्मा को रहने का स्थान वो अधोलोक है। चारों गति भी माने संसार भी मेरी पणति में है, संसार जिससे मिलता है राग द्वेष मोह भी मेरी पणति, संसार मार्ग, और ऐसे ही मोक्ष और मोक्ष मार्ग संवर निद्रा वो भी मेरी पणति में। फिर से इतना निश्चित हो जाना चाहिए, मेरा अस्तित्व में ही सब कुछ मेरा है, मेरे अस्तित्व के बाहर जो भी है सो मेरा नहीं है, और मेरा नहीं उसको मुझे कर्तापना कर्ता बुद्धि करनी नहीं, तो सुख कहाँ है? फिर से कर्ता बुद्धि में या ज्ञातापने में, कि पर द्रव्य का और रागादि भाव का कर्तापने में आकुलता के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पूज्य गुरुदेव से कि मैं कैसा हूँ? जीव तो ज्ञाता है। कौन ज्ञाता है? कौन है? मैं कभी हर समय। फिर एंजॉयमेंट, इतना सब मेहनत करके कमाए, इतना अच्छा कोई बिल्डिंग बनाया, कोई हिल स्टेशन गए और बोले तो मैं ज्ञाता तो आए क्यों ये थे? यदि ज्ञाता ही रहना था तो आए क्यों? सही मान में साव गुजराती में रागज मजूरी करावे से आपने कोई दी लागतु नहीं, राग नो बोझो लागतु नहीं, क्या पण बार जे कहीं गोतीये छे करिए छे कौन करावे से मजूरी? जीवन में कम से कम यदि थकान लगी है तो ए रागादि भावों से विरक्ति करनी पड़ेगी, मेरे में क्या कमी है और पर पदार्थों में क्या अधिकता है कि मैं निरंतर परद्रव्य के पीछे दौड़े जा रहा हूँ। जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जब भी चाहिए, आप समझ सकते हैं ना, जो भी चाहिए फिर जितना क्वांटिटी, जब भी माने टाइम, वो सभी मेरे में पूर्णतया सदा काल है, तो मैं क्यों परद्रव्य के पीछे दौड़ रहा हूँ? ये मृग तृष्णा जैसा है, जैसे मृग तृष्णा में दौड़ते हैं तो कितना पानी मिलता है? चलो थोड़ा बहुत किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा दौड़ेंगे तो क्या कितना मिलेगा? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ही नहीं। ऐसा ही एक बार इतना सोच लेना, एक बार असंभव ऐसा मृग जल में पानी मिल जाएगा, मृग तृष्णा के पीछे पानी मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है। ले इसी मैं कभी बाह्य इंद्री विषयों में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ कि जीव तो कैसा, मैं तो कैसा हूँ? ज्ञाता है वह ज्ञाता ही है। समय सार में कौन सी गाथा में आता है ऐसा? ज्ञात ते तो तेज छे, आता है छठी गाथा में। तो ज्ञात है वो तो वही है, उसका क्या कहने का? उसका अमृतचंद्राचार्य देव ने क्या अर्थ किया? उसका क्या किया? ज्ञात वो तो वही है, स्व प्रकाशन की अवस्था हो या पर प्रकाशन की अवस्था हो, मैं तो कैसा हूं? ज्ञाता हूं। राग को जानने के समय में रागमय होता नहीं हूं, मैं तो ज्ञानमय ही हूं। ऐसे ही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी मैं कैसा हूं? ज्ञानमय ही रहता हूं। ऐसे नहीं कि पर को जानने के समय में कोई मैं ज्ञेयमय हो जाता हूं, और इसके नहीं होता इसलिए कौन सा एक सिद्धांत दिया? वही छठी गाथा में, ज्ञेय कृत अशुद्धता होती नहीं है, शब्द दिया तो उसका दृष्टांत भी है ना। कौन सा दृष्टांत है? अग्नि का दृष्टांत। जैसे अलग अलग दाह्य पदार्थ होते हैं, माने कोई समझ लो एक कोई कलरफुल वस्तु होगी और उसका जो अग्नि वो कैसी होगी? वो भी कलरफुल होगी नहीं? सूखे पत्ते होते, कोई ग्रीन कलर के हो गए और दूसरा कोई भी, लेकिन अग्नि तो एक रूप ही है। कोई ज्ञेयकृत, कोई ज्ञेय दुर्गंध होगा तो उसकी अग्नि कैसी होगी? दुर्गंधमय होगी नहीं? कोई ऐसी अग्नि कैसी होती है? ऐसा ही मैं कैसा हूँ? मैं तो ज्ञात हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला ही रहता हूँ। ज्ञेयकृत मेरे में कभी अशुद्धता होती नहीं, तो मैं तो ज्ञाता हूँ वो ज्ञाता। फिर शब्द और क्या दिया, ही माने क्या, एक ही एकांत निश्चित। मेरे ज्ञातापने में कोई फर्क होता नहीं है। ज्ञाता नु कर्म अने ज्ञाता ही हूँ, पुद्गल कर्म का करता नहीं, और पुद्गल कर्म है वो पुद्गल ही है। सामने दूसरा भेद किया, मैं ज्ञाता तो ज्ञाता ही हूँ, मैं पुद्गल कर्म का करता नहीं, क्योंकि मैं कैसा हूँ, ज्ञाता हूँ। एक किसकी बात आई, मेरी। अभी सामने पुद्गल की क्या है, चलो मैं पुद्गल का करता नहीं, लेकिन पुद्गल तो मेरा करता कभी बनता होगा, बनता तो है। अभी शरीर हमको कहाँ ले जाएगा, इस स्वाध्याय के बाद ये शरीर हमको कहाँ लेके जाएगा, चलो कार तो नहीं लेके जाए, लेकिन शरीर कहाँ लेके जाएगा, शरीर चला तो यहाँ तक पहुँचे कि नहीं, नहीं शरीर नहीं चलता है तो आ पाते हैं हम यहाँ, नहीं आते हैं ना, तो शरीर लाता है ना हमें, पैदल चल के आते हैं, तो यहाँ तक किसने पहुँचा है हमें, नहीं बीमार होते तो कहाँ बैठे होते, यहाँ सोते हो के यहीं आते होंगे। शरीर है तो सब कुछ होता है ना, शरीर नहीं होगा तो कुछ धर्म होगा नहीं। आश्चर्य है, अशरीरी होने की सोचते हो और शरीर का मदद लेना है, कहाँ पहुँचना है हमें, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तू ही। अरे कम से कम इतना सिद्ध भगवान का स्वरूप देख के तो भावना कर कि शरीर मेरी साधना के सहायक नहीं है, आत्मा की साधना आत्मा में आत्मा से होती है। साधना कभी भी पराधीन नहीं होती है, साधना स्वाधीन रूप से होती है। हम पराधीनता से ही मान लेते, गुजराती मैंने सुख आँखों उपाड़ज आँखों पराधीन पड़े थे रे उसे। तो यहाँ फिर से पहले दो की भिन्नता गुरुदेव बताए कि मैं कैसा हूँ, ज्ञाता हूँ वो ज्ञाता ही हूँ, पुद्गल कर्म का मैं करता नहीं। और उसी समय जो पुद्गल है वो कैसा है, कि पुद्गल है वो कैसा है, पुद्गल कर्म है वो पुद्गल ही है, सेंट पर्सन से। आपका सेंट पर्सन का क्या बोलते हैं, 100% जो पुद्गल है अपना शरीर है वो क्या है, सेमी सेमी जड़ या सेमी चेतन, नहीं इंग्लिश तो शब्द होता है ना, सेमी लिक्विड होता है कि नहीं, सेमी सॉलिड लिक्विड, ऐसे ये जो मुर्दा है वो सेंट पर्सन कैसा है, पुद्गल जड़ है, लेकिन ये जो शरीर जीवित शरीर है वो कैसा है, नहीं सेमी सेमी जीव और सेमी कथन चीज, नहीं पूरा अपना शरीर, अपना शरीर पूरा नहीं शरीर, अरे वाह यहाँ तक मंदिर तक न, बाहर निकलेंगे तो किसका बन जाएगा, जीवन में फिर से ये तत्व अभ्यास के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ऐसा संस्कार अपने जीवन में डाले कि हर समय शरीर का संग हो लेकिन शरीर की अलिप्तता सा भाव हो अपने। संग किसका होगा, जब तक पूर्णता को नहीं प्राप्त करेंगे तभी शरीर का संग होगा, लेकिन इसमें कभी भी एकत्व न हो, अलिप्तता हो। तो पुद्गल जो कर्म है वो पूर्णतया ये पुद्गल ही है, वो मेरा, ज्ञाता का माने किसका, मेरा वो कर्म माने कार्य नहीं है, पुद्गल स्वयं पुद्गल रूप ही है, वही उसका कार्य का करता है, मैं उसका कार्य का करता नहीं। इस प्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य है तो भी, कौन दो प्रगट भिन्न है, जीव में चैतन्य ज्ञाता ऐसा और सामने पुद्गल जड़, ये दोनों कैसे शब्द है, प्रगट, प्रगट माने सामने प्रत्यक्ष देखे ऐसा प्रगट रूप है, इसे कोई सीक्रेट नहीं है, ये छुपाने की बात नहीं है, कि दोनों अपने स्वभाव से वर्तमान प्रगट रूप भिन्न द्रव्य है तो भी क्या हम भूल करते हैं, मैं करता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म माने कार्य है, मैं करता हूँ। ये क्यों ऐसा रहता है, कर्तापने की अधिकता क्यों रहती है, ज्ञाता स्वभाव होने पर भी, ज्ञाता स्वभाव न हो और कर्तापना लगे तो समझ सकते हैं, लेकिन मैं कैसा हूँ, ज्ञान स्वभाव से भरा, सर्वज्ञ पर शक्ति से भरा हुआ, अने तो भी मैं करता हूँ, मैं पुद्गल का करता हूँ, रागादि भाव का करता हूँ, और ये पुद्गल मेरा क्या है, कर्म माने कार्य, ऐसा अज्ञानियों को यह मोह क्यों नाचता है? आता है समय सर में देखा था, हम नहीं देख 68 गाथा के बाद में ये अज्ञान क्यों है? और जीव अजीव अधिकार है, उसका अंत में आचार्य देव बताते दो की भिन्नता बताए, और तो भी आचार्य देव को आश्चर्य और खेद होता है कि इतना प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रूप से ये बताया तो भी पड़द्रेव के कर्तृत्व का मुँह क्यों नाचता है? और आगे कलश में फिर क्या लिया, तू माने या न माने, मोह नाचो तो नाचो, तू दुखी होगा, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, तू स्वीकारे या न स्वीकारे। हम कोई सोने को पीतल मान लेवे या कोई पीतल को सोना मान लेवे तो क्या होगा, वहाँ कन्वर्जन हो जाएगा ना। अरे पर मैं मानता हूँ ना, लेकिन मैं मानता हूँ, मुझे लगता है ना, अपने गरीब अपने शू से अपना आग्रह हो ना बधु, हूँ मानो छे ना, मैं मानता। अरे भैया तू माने ऐसा जगत में हो तो जगत में कोई कोई तेरे लिए दुश्मन नहीं होगा, तेरा पूरा घर सोने का बन जाएगा। हमारे मान से मानने या न मानने से वस्तु स्वरूप बदलता नहीं है। हमें क्या करना है, वस्तु बदलनी है, विश्व बदलना है, या अपने मिथ्या अभिप्राय को बदलना है? और हम क्या चाहते हैं, अपना अभिप्राय को तो बदलना नहीं चाहते और विश्व को बदलना चाहते, और यही कर्ता बुद्धि अनादि का परिभ्रमण की मूल जड़ है। हिंदी में बोलते हैं जड़ ही बोलते हैं ना, पूरे अनादि काल से परिभ्रमण जो हो रहा है उसकी मूल जड़ कौन है, मिथ्या अभिप्राय। और ये मिथ्या अभिप्राय से अनादि से चतुर्गति परिभ्रमण करते हैं और भावी काल में भी ऐसे ही करते करते, फिलिंग द ब्लैंक करना है, नहीं करेंगे, बोलना तो बहुत सरल है। अरे जितना बोलना सरल है ना, इससे भी सरल अपना पुरुषार्थ यदि करे तो मिलता है। बोलना में भी विकल्प करना पड़ेगा, और ये स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होगा तो स्वयं हुए बिना रहेगा ना। तो पूज्य गुरुदेव सिंह ने एक समय सार के वो श्लोक पर से हमें बताया कि इतना तो तू निश्चित कर, जड़ भावे जड़ परिणामे चेतन चेतन, और जैसे आया देहाध्यास, मुख्य जो ये कर्ता बुद्धि में क्या है, पूरा देह, और देह का क्या है, अध्यास, अध्यास माने इसमें मेरापना एकत्वपना, देहाध्यास, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता। और जैसे बंध अधिकार में लिया, जीव को मारो या न मारो, अध्यवसान वही बंध का कारण है, उसमें जो लिया है। तो यही मुख्यतः यहाँ मैं दो द्रव्य की भिन्नता की बात बताई कि तू पुद्गल कर्म का नहीं करता है और पुद्गल कर्म तेरा कार्य का करता नहीं, दो स्वाधीन द्रव्य अपने अपने परिणाम को करता है। नौ वैगा सुधी से सवा आठ थी नौ सुधी, आगे 43 नंबर का बोल लेते हैं। बहुत एक इसमें भी अच्छा है, गुरुदेशी हमें प्रेरणा देते हैं, हर बोल में कुछ न कुछ तो प्रेरणा है ही। पहले 42 नंबर के जो थे उसमें कौन सी प्रेरणा दी, कभी भी पड़द्रव्य में एकत्व मत करना, तू ज्ञाता पदार्थ भगवान आत्मा है। अभी यहाँ कहते मुझे बाहर का कुछ चाहिए है ना शब्द, नहीं सही हिंदी बोल रहा हूँ ना, है तो गुजराती, मुझे बाहर का, फिर आगे क्या लिखा है, गुरुदेसी ने तो कुछ लिखा है, हम करेक्ट कर लेते, हमें सभी चाहिए, कुछ नहीं है, हम कुछ मर्यादा नहीं करते। तृष्णा तो इतनी लगी है कि पूरा विश्व, वो तो आता है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर कभी से युग युग से इच्छा सागर में गते। तृष्णा किस कहते, चलो प्रश्न हम कहते, तृष्णा किसे कहते हैं, जिसके वो मर्यादा नहीं है। और समता किसको कहे, जिसको कुछ चाहिए नहीं। तृष्णा के कने गुजराती में तृष्णा कोने का है, जेने कोई दी पूरु पड़े नहीं। अने समता कोने कहवाय, जेने कोई दी काई जोवे नहीं। और हम कहाँ रुके हुए, ममत्व में, तृष्णा में। अरे अपनी तृष्णा इतनी है, यदि इतना तो पुण्य नहीं है, संभव भी नहीं। पूरा तीन लोग मिल जाए तो भी तृष्णा इतनी है कि मुँह पड़े खड्डे में एक रेणुवत है, एक परमाणु जितना है। तृष्णा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं। देव पर्याय में गए तो भी क्या रह गई, वहाँ कौन सा कसाई की मुख्यता है, लोभ कसाय। वर्तमान का लोभ और भावी की तृष्णा। इतना होने पर भी मात्सर्य भाव होता है, मुझे क्यों कम और दूसरे को क्यों ज्यादा। तृष्णा एक, एक तृष्णा का एक स्वभाव क्या होता है, जो है उसको वो नहीं देखे, नहीं है उसको वो देखेगी। तृष्णा क्या करती, गुजराती में कहे ना, आधा ग्लास पानी से भरा है, तृष्णा किसको देखेगी, क्यों खाली है। अरे जितना भरा है वो भी तेरे लिए इनफ है, काफ़ी है, फिर भी किसको देखेगी, नहीं है तो भी। तृष्णा से ही तो यहाँ कहते मुझे बाहर का, बाहर का माने कौन सा, इतनी निष्फलता होनी चाहिए। और पदार्थ की तो दूर की बात, मेरे ये शरीर जो है वो निरोग रहे, व्यवस्थित रहे। जगत में मुझे कुछ मान सम्मान कोई भी विषय ले लो, मुझे बाहर का कुछ चाहिए ऐसा अभिप्राय है। इसके सामने मुनिराज के लिए जैसे आता है ना, कहाँ तक की मुनिराज को उपेक्षा होती है। अपूर्व अवसर में अभी हम सब ने सुना क्या है, बाह्यांतर निग्रंथ पने के बाद कैसी है, अन्य कारणे अन्य कसु ले नहीं, ले नहीं होगा, नहीं नहीं फिर से चेक कर लेना क्या है। लेने की बात तो है ही नहीं, कल्पना माने विकल्प भी खड़ा ना हो। अन्य कारण से माने ये पंचम आ रहा है, हमारी कोई शारीरिक स्थिति सहनन कम है इसलिए हमें कुछ दो। अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं। और आज के आगे देहे पण, पण क्यों लिया, देहे भी और तो दूर के पदार्थ। देह 24 घंटा साथ में होने पर भी देहे पण बहु मूर्छा नव जो ये जो, अरे थोड़ी तरकनी पड़ेगी ना, नहीं तो यदि हम बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाए। वो तो सिंपल है, पूछने की क्या बात है। हम शरीर की संभाल इतनी लेते हैं इसलिए हम कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जैसे डॉक्टर कहते हैं, जब से डाइटिशियन कहते हैं, इसे नहीं, जिन मंदिर में 6 बजे अभिषेक को आना, नहीं आ सकते, लेकिन डॉक्टर के 6 बजे जॉगिंग को जाना है तो कितने बजे तैयार हो जाएंगे, नहीं वो तो सुनना ही पड़ेगा ना डॉक्टर का। आश्चर्य है, जैनी होके इनका स्वीकारते हैं और सर्वज्ञ भगवान का नहीं स्वीकार। एक बहुत खेद होता है, आश्चर्य खेद। सुबह उठ के हमो अरिहंताणम बोलते हैं और दिन में भगवान तेरी वाणी नहीं सुनूंगा मैं, नहीं लगती विचित्रता। सुबह उठ के किसका, जैनी इतना तो करते हैं, कम से कम इतना तो करते हैं, किसका स्मरण करते हैं। तो कभी भी दिन भर में कभी सी भावना हुई कि जिसको मैंने नमस्कार किया है उसकी वाणी को, उस आचार्य की वाणी को, मुनिराज की वाणी को कभी मैं सुनूं तो सही। कितनी विचित्रताओं से भरा हमारा जीवन है और हम फिर कंप्लेन क्या करते हैं, मुझे क्यों सुख नहीं मिलता है, आत्मा क्यों नहीं मिलता है। अरे ऐसी स्थिति में होना ही नहीं चाहिए। धर्म ऐसा सस्ता नहीं है, तुम अपने अभिप्राय से, मति कल्पना से, स्वच्छंदता से चले जाओ और आत्मा मिले, धर्म मिले। आपको कुछ चाहिए तो यू टू पे द प्राइस। इसे आत्मा चाहिए तो इसके लिए हमें कुछ कम से कम रुचि की कीमत देनी पड़ेगी। तो यहाँ कहते मुझे बाहर का कुछ चाहिए ऐसे मानना। देखिए फिर से ये गुरुदेव सिंह ने एक अपेक्षा से दूसरे राजा को तो कहा था ऐसा, जो मांगे सो भिखारी होता है, मांगने वाला भिखारी होता है, थोड़ा या ज़्यादा, थोड़ा मांगे या अधिक मांगे, लेकिन मांगने वाला भिखारी होता है। तो मुझे कुछ चाहिए ऐसे मानने वाला क्या है, शब्द ही दिया है ना, भिखारी है, ऐसे कौन होंगे जगत में, जो रोड पे खड़े होंगे वही हो गए ना, हम प्राउडली कहते हैं ना, हम नहीं, मैं प्राउडली करके बोलते हैं ना, नहीं चलो और भी समझे, हम 24 घंटे में से कितने समय के लिए भिखारी होते हैं, नहीं घर में आके सो जाते तभी तो भिखारी नहीं होते हैं, नहीं वो जैसे रास्ते पे खड़ा होगा 8 घंटा जो भी, हम कितने 24 घंटे में से कितने घंटे सो जाते तभी तो कुछ मांगते नहीं, तभी भी मांगते ऐसे ही पथारी चाहिए, ऐसे ही चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो कैसे हो जाते, खड़े हो जाते हैं। ये क्या है, पराधीनता नहीं है तो क्या है। यहाँ तो गुरुदेव सिंह ने कुछ भी लिखा है, एक भी इंद्रिय विषय के अंश मात्र भी जो मांगता है वो क्या है, अंततः क्या है, वो भिखारी है। और इसके सामने मुझे मेरा एक आत्मा ही चाहिए, क्या फिर से एक दृढ़ता के परिणाम होना चाहिए, शब्द की बात नहीं है, शब्द तो बहुत बोल लेते हैं, इसके साथ में क्या होता है, श्रद्धा का दृढ़ता का परिणाम होना है। मुझे मेरा भी एक कहने है, बाकी मेरा और आत्मा क्या है, मैं ही स्वयं आत्मा, मुझे एक आत्मा ही, क्या है शब्द, एक आत्मा ही, इसमें किसका निषेध हो गया, सही माने में इससे बड़ा और त्याग क्या करना है हमें, किसके माने जरूरत लगी, कितने पर पदार्थ की जरूरत लगी, इसमें एक आत्मा ही चाहिए, इस पूरे जगत के बाह्य विषयों की, 5 इंद्रिय के विषयों की क्या हुई, त्याग हुआ, यही सर्वप्रथम श्रद्धा का त्याग होता है, फिर उनके प्रति अस्थिरता का विकल्प भी त्याग होता है, तो मुनि दशा में सहज रूप से बाह्य में निर्गुण पना हो जाता है। लेकिन मूलतः श्रद्धा में ही जहाँ त्याग नहीं है तो चारित्र से त्याग कहाँ से होगा, ये चारित्र श्रद्धा के बिना चारित्र नहीं होता है, ये तो जबरदस्ती है। तो यहाँ मुझे मेरा एक आत्मा ही चाहिए अस्थि रूप से, और साथ में नास्ति दूसरा कुछ भी, कुछ रा दूसरा नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, पैसे चक्रवर्ती आदि तो सबके पास तो बहुत होता है, ज्ञानी चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर होता है ना, उसके पास तो होता है कि नहीं, तो उसको आप मना नहीं करते और हमें ऐसे क्यों कहते हो, उन्होंने कभी भी विषयों की तृष्णा नहीं की, पुण्य से योग है लेकिन भेद ज्ञान से भिन्नता है, क्या है? जो संयोग मिला है वो, इसमें कोई तृष्णा नहीं की है उन्हें, पुण्य से क्या मिला है, योग मिला है, लेकिन उसी समय भेद ज्ञान से उससे क्या है, अलिप्तता है, और अलिप्तता का नाम वैराग्य है। और मुझे आत्मा ही चाहिए, वो अपनी आत्मा की महिमा का ज्ञान है, और ऐसे ही ज्ञान वैराग्य शक्ति जिसको है उसको ही ज्ञानी धर्मात्मा कहने में आता है। तो उनका विस्तार है वो आगे लेंगे।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, असहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी।